ठंडे मौसम के दौरान भी ग्रेट बैरियर रीफ में बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग हो रही है। ये जलवायु पर नजर रखने वालों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली के लिए चिंता का विषय है। पिछले साल ग्रेट बैरियर रीफ के ठीक होने का समय होना चाहिए था। ठंडे समुद्री तापमान ने कोरल को बैक टू बैक ब्लीचिंग से उबरने का मौका दिया होगा। इसके बजाय पिछली गर्मियों में ये अनुमान से अधिक गर्म था। 400 वर्षों में कुछ सबसे गर्म पानी के कारण ग्रेट बैरियर रीफ को नुकसान उठाना पड़ा। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन साइंस के शोध निदेशक डेविड वाकुनफेट का कहना है कि इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग हुई।
Although traditionally we would say that La Nina years are cooler than neutral years or El Nino years, and that's certainly been our experience. Of course, the climate of the entire planet is changing and warming. We are now at more than 1.1 degree warmer than in pre-industrial times. And so even a La Nina, albeit that it is generally cooler, is not as cool as it used to be. And last year demonstrated that even in La Nina conditions, we can reach temperatures that cause a mass coral bleaching event.
Australian Institute of Marine Sciences ke varishth shodh vaigyanik Dr. Mike Emsley ne kaha ki unki nayi report mein bataya gaya hai ki pichle varshon mein dekhi gayi coral recovery 2022 mein ruk gayi hai. पिछले सात सालों में ग्रेट बैरियर रीफ में चार बार बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग हुई है। ये एक अभूतपूर्व आवृत्ति है जो रीफ के दो तिहाई हिस्से को प्रभावित करती है। समुद्र की सतह का तापमान बहुत लंबे समय तक बहुत अधिक गर्म रहने पर ब्लीचिंग होती है। कोरल तनाव में आ जाते हैं और शैवाल को बाहर निकाल देते हैं और सफेद हो जाते हैं। वे मरे नहीं हैं, लेकिन तापमान गिरने पर ही ठीक हो सकते हैं। कोरल कोर के विश्लेषण से शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन लगातार कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार है। उन्हें डर है कि अगर अधिक कार्यवाही नहीं की गई तो दुनिया भर में रीफ खतरे में पड़ सकते हैं। जलवायु वैज्ञानिक पानी के अंदर सर्जिकल सटीकता के साथ काम कर रहे हैं। ड्रिल की मदद से वे ग्रेट बैरियर रीफ के भीतर कोरल में गहरी ड्रिलिंग कर रहे हैं ताकि उसका कोर निकाला जा सके। यूनिवर्सिटी ऑफ लैंसेस्टन से प्रोफेसर जेम्स जिंके बताते हैं कि ये वास्तव में जीवित संवेदक हैं जो सैकड़ों वर्षों तक समुद्र में बैठे रहते हैं।
दे आर एक्चुअली लिविंग सेंसर्स दैट फॉर अस सिट इन द ओशन फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एंड रिकॉर्डिंग व्हाट हैज हैपेंड टू देम over many centuries during their lifetime.
Lambi safed chhadiyon ki tarah dikhne wale in band par ateet mein hue charam mausam ka prabhav aasani se dikhai deta hai. Bangni rang ki patti dikhti hai.
You see this kind of purple band, so that is a stress band, most likely formed during a thermal stress event. So this core was drilled in 2018, so it was probably in 2010 given the distance from the core top down to here.
प्रोफेसर जिंके के रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं द्वारा विश्लेषित किए गए खजाने में से एक थे जब यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के डॉक्टर बेन हेल्ले ने बैरियर रीफ में समाहित पानी के आंकड़ों को देखा तो वो दंग रह गए। वो बताते हैं कि अब तक हमें इस बात की अच्छी समझ नहीं थी कि पिछली शताब्दियां कैसी दिखती थी।
Yeah, sadly, this year was the most extreme sea surface temperature for January to March in the last 400 years in the Coral Sea. Yeah, we were really shocked. Until now, we didn't have a good understanding of what the past centuries looked like in the Great Barrier Reef in much detail.
शोधकर्ताओं ने 1618 तक वापस जाकर कोरल सागर के सतही तापमान का मॉडल तैयार किया। 50 के दशक के बाद से तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई जो वैश्विक तापमान में वृद्धि के साथ मेल खाता है। 2016, 2017, 2020, 2022 और 2024 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्षों में है। उन सभी वर्षों में रीफ में बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग हो रही थी। डॉक्टर रोजन वीडन ग्रेट बैरियर रीफ मैरीन अथॉरिटी के मुख्य वैज्ञानिक हैं। और वो कहते हैं कि रिपोर्ट महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है और हाल की घटनाओं में ये काफी अधिक लगातार और अधिक गंभीर होती जा रही है.
What this is showing us is that the mass coral bleaching, which is coral bleaching or that stress response across large areas of coral reefs, is a modern phenomenon. I mean, and that's, we have seen it correlate with elevated temperatures in the satellite record over the past couple of decades, and getting substantially more frequent and more severe over recent events.
जून में यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में इस रूप में सूचीबद्ध नहीं करने का विकल्प चुना, लेकिन सरकार को फरवरी तक इसके स्वास्थ्य पर अपडेट देना है. पर्यावरण मंत्री तानिया प्लीवर्सिक ने एसपीएस को बताया कि लेबर सरकार इस समुद्री अद्भुत दृश्य पर पड़ रहे असर को हटाने की अपनी जिम्मेदारी को समझती है. इसने संरक्षण प्रयासों के लिए $1.2 बिलियन देने का वादा किया है. डॉ वीडन का कहना है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित समुद्री प्राधिकरण प्रभावों को कम करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि पानी की गुणवत्ता में सुधार, तटीय मछली पकड़ने का प्रबंधन, तटीय विकास और थॉर्न स्टार फिश प्रकोपों का प्रबंधन आदि.
The primary focus is about reducing local scale pressures, so things like improving water quality, managing effects of fishing, making sure that coastal development doesn't encroach upon key habitats, and most recently focusing upon managing predator and starfish outbreaks. And the reason for doing all of that is because we're seeing these mounting pressures of climate change.
मानव प्रेरित वैश्विक तापमान वर्तमान में औद्योगीकरण से पहले के स्तर की तुलना में 1.1 डिग्री पर है. यदि यह 1.5 डिग्री तक पहुंच जाता है तो पूर्वानुमान है कि 70-90% रीफ नष्ट हो जाएगी. रिपोर्ट के सहलेखकों में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ वुलनगांव से हेलन मैकग्रेकर का कहना है कि शोध यूनेस्को रेटिंग के मामले पर पुनर्विचार करने का मामला है, लेकिन ये दुनिया के लिए एक रैली कॉल है कि हमें अपने उत्सर्जन को तत्काल तुरंत कम करने की आवश्यकता है. नवीन राजीव की इस रिपोर्ट को एसपीएस हिंदी के लिए प्रस्तुत किया अनीता बरार ने.